स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 2 अगस्त और दिन शुक्रवार, लेबर कोड बिल के खिलाफ मजदूरों का आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन।
जो बीजेपी सरकार कर रही है वो मालिक के हित में कर रही है और श्रमिक के हित के खिलाफ सिर्फ नहीं लेकिन श्रमिक पूरे श्रमिक वर्ग पे, मजदूर वर्ग पे एक बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं।
पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव को आज मिल सकता है कॉन्सुलर एक्सेस। अमेरिका ने चीनी सामानों पर नए टैरिफ लगाने का किया ऐलान।
प्रेसिडेंट शी हू इज समबडी आई लाइक अ लॉट, आई थिंक ही वांट्स टू मेक अ डील।
अमेरिकी जेल में बंद कुछ भारतीय क्यों कर रहे हैं भूख हड़ताल।
They want to continue their hunger strike. I wouldn't call it a suicide mission.
और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधुवासिनी से सुनिए। केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानूनों में संशोधन को लेकर आज पूरे भारत में ट्रेड यूनियन की हड़ताल है। सरकार ने 4 श्रम कानूनों को बदलने का फैसला लिया है और आज की हड़ताल इसी के विरोध में है। ये कानून मजदूरी और कर्मचारियों की सुरक्षा से जुड़े हैं। ट्रेड यूनियंस का कहना है कि ये बदलाव मजदूर विरोधी हैं और इससे सिर्फ चुनिंदा कंपनियों और कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचेगा। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी उत्पादों पर $300 बिलियन का अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने का ऐलान किया है। ये शुल्क सितंबर से लागू होगा। अमेरिका ने चीनी सामानों पर पहले ही $250 बिलियन की कीमत का आयात शुल्क लगा रखा है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इबोला पर काबू पाने की कोशिश कर रही राहत एजेंसियों ने अपील की है कि कॉन्गो और रवांडा की सीमा को खुला रखा जाए। हाल के कुछ दिनों में कॉन्गो के गोमा शहर में इबोला की वजह से 2 मौतों का मामला सामने आया है। गोमा एक घनी आबादी वाला शहर है जो कॉन्गो और रवांडा की सीमा पर बसा है। संयुक्त राष्ट्र में इबोला इमरजेंसी रिस्पांस कोऑर्डिनेटर डेविड ग्रेजली ने बीबीसी से कहा कि अगर लोग चुपके से रवांडा जाने लगेंगे तो इबोला से लड़ना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा।
If you close the border post, what happens is that people find alternate ways to get around it.
अगर आप बॉर्डर बंद करेंगे तो लोग इसे पार करने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे और सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इबोला से निपटना और मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए ये सबके हित में होगा कि बॉर्डर खुला रखा जाए और बीमारी से रोकथाम के उपाय सुचारू ढंग से चलते रहें। ये ज्यादा तर्कपूर्ण होगा। ये थे संयुक्त राष्ट्र के इबोला इमरजेंसी रिस्पांस कोऑर्डिनेटर डेविड ग्रेजली। पश्चिमी अफ्रीका में इबोला एक महामारी की तरह उभरा है। यहाँ साल 2014 से 2016 के बीच इबोला की चपेट में आकर 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी सेना का कहना है कि उसने उत्तर कोरिया के एक नए मिसाइल लॉन्च के बारे में पता चला है। सेना के खुफिया सूत्रों के मुताबिक उत्तर कोरिया का ये मिसाइल लॉन्च पिछले हफ्ते किए गए बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च से मिलता जुलता है। दक्षिण कोरिया ने भी अमरीकी सेना के इस दावे की पुष्टि की है। वहीं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो इस मिसाइल लॉन्च से चिंतित नहीं हैं। हमने शॉर्ट रेंज मिसाइलों के बारे में कभी कोई समझौता किया ही नहीं। मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। हम देखेंगे कि आगे क्या होता है, लेकिन ये शॉर्ट रेंज मिसाइलें हैं, ये बहुत ही सामान्य हैं। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी का कहना है कि सीरियाई सरकार विद्रोहियों के कब्जे वाले उत्तर पश्चिमी इलाके में युद्ध विराम के लिए तैयार हो गई है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा कि युद्ध विराम इस बात पर निर्भर करेगा कि लड़ाके इन इलाकों से हटते हैं या नहीं। वैसे ये डील पिछले साल ही हो गई थी, लेकिन सरकार इसे अब लागू करके इसका परिणाम देखना चाहती है। लड़ाकों ने युद्ध विमान संधि के बारे में अब तक कोई बयान नहीं दिया है। वहीं सीरिया के रूसी सहयोगियों को इस पर संदेह है कि लड़ाके सीरिया की उम्मीद के मुताबिक अपने कब्जे वाले इलाके छोड़ देंगे। सऊदी अरब ने एक नए कानून का ऐलान किया है जो महिलाओं को बिना किसी पुरुष के इजाजत देश के बाहर यात्रा देने का अधिकार देता है। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम नमस्कार भारत में और मैं हूं इकबाल अहमद। आज है अगस्त की 2 तारीख और दिन है आज शुक्रवार। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत मजदूरों के विरोध प्रदर्शन से। मोदी सरकार के नए श्रम विधेयकों के विरोध में देश भर के मजदूर आज सड़कों पर उतरेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर सीटू, एटक और इंटक जैसे केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने आज देशव्यापी हड़ताल बुलाई है। उनका कहना है कि ये विधेयक मजदूरों के हित में नहीं बल्कि कॉरपोरेट के हित में है, जबकि सरकार का कहना है कि मजदूरों की भलाई के लिए वो ये बिल पेश कर रहे हैं। सुनिए बीबीसी संवाददाता गुरप्रीत सैनी की ये रिपोर्ट।
माननीय अध्यक्ष जी, अभी 17वीं लोकसभा में पहली बार सांसदों के साथ संवाद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब और गरीबी से लड़ने वाले अनेक आदर्शों को हमारे समक्ष रखा था। इन्हीं आदर्शों की सोच को साकार करने वाला यह बिल कोड ऑन वेजेज मैं सदन में पेश करना चाहता हूँ। वर्तमान श्रम कानून बहुत पुराने समय के हैं और इनमें से 17 श्रम कानून तो 50 वर्ष से अधिक पुराने हैं और कुछ कानून तो आज़ादी से पहले के हैं।
श्रम और रोजगार मामलों के राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने ये बात उस वक्त कही जब मंगलवार को संसद के निचले सदन लोकसभा में वेजेस कोड बिल पास किया जा रहा था। सरकार का कहना है कि इस बिल से हर मजदूर को न्यूनतम वेतन मिलना सुनिश्चित होगा। इसके अलावा वेतन के भुगतान में देरी की शिकायतें भी दूर होंगी। ये कानून संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र दोनों के श्रमिकों के लिए होगा, लेकिन देश भर की ट्रेड यूनियन इन विधेयकों का विरोध कर रही है। न्यू ट्रेड यूनियन इनिशिएटिव के जनरल सेक्रेटरी गौतम मोदी कहते हैं,
जो कानून ला रहे हैं उसमें वो मालिकों के हित के कानून है, वो श्रमिक के हित के कानून नहीं है। ये कोशिश है कि मालिक जो सुविधा मांग रहे हैं उनको दी जा रही है। सरकार के हाथ मजदूरों के हाथ में जो आज जो हक है कि वो कंप्लेंट कर सकते हैं, अपने ट्रेड यूनियन के माध्यम से अपनी समस्याएं को उठा सकते हैं, इन सबको रद्द की जा रही है। तो ये एक साफ बात है कि आज जो बीजेपी सरकार कर रही है वो मालिक के हित में कर रही है और श्रमिक के हित के खिलाफ सिर्फ नहीं लेकिन श्रमिक पूरे श्रमिक वर्ग पे, मजदूर वर्ग पे एक बहुत बड़ा हमला करने जा रही है।
दरअसल 32 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 कोर्ट्स में समाहित किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत कोड ऑफ वेजेस है जिसमें मेहनताने से जुड़े 4 एक्ट समाहित हो रहे हैं। लोकसभा में गंगवार ने बताया कि श्रम मंत्रालय में कोई भी परिवर्तन करने के लिए बड़े श्रमिक संगठन, नियोक्ताओं और राज्य सरकारों से पहले चर्चा करनी होती है। इसे त्रिपक्षीय वार्ता कहा जाता है। इसके बाद आम राय के साथ ही कोई भी परिवर्तन करना संभव होता है, लेकिन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी अमरजीत कौर का कहना है,
जिस ढंग से भारत की सरकार ने कोडिफिकेशन का प्रोसेस चलाया है उसमें किसी तरीके से त्रिपक्षीय वार्ता को उन्होंने तरजीह नहीं दी है। पहली बात तो ये हमारा विरोध है। दूसरा है, जिन कोड्स के ऊपर थोड़ी बहुत बात भी हुई थी उसमें भी उन्होंने हमारे किसी पक्ष को स्वीकार नहीं किया। और फिर नेशनल मिनिमम वेज की वो बात किए, एक सो कॉल्ड कमेटी बना के उसकी रिपोर्ट लेके उसको 10,000 से नीचे ला रहे थे और अल्टीमेटली अब पार्लियामेंट के अंदर जब पेश किया है तो 178 रुपए पर डे, तो वो तो ₹4,628 पड़ेगा। हम ट्रेड यूनियन की डिमांड मिनिमम वेज की 18,000 रुपीज की है।
ट्रेड यूनियन का आरोप है कि इन विधेयकों के जरिए श्रमिकों के हड़ताल करने के हक को खत्म किया जा रहा है। उनका कहना है कि इन विधेयकों के कई प्रावधान वहीं लागू होंगे जहां 10 कर्मचारी काम करते हैं, जिसका मतलब है 93% वर्कफोर्स इसके बाहर है। इनमें दिहाड़ी मजदूर और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि इन विधेयकों में असंगठित क्षेत्र का खास ख्याल रखा गया है। सरकार की कोशिश है कि वो मौजूदा सत्र में ही इन विधेयकों को पास कराए। गुरप्रीत सैनी, बीबीसी दिल्ली।
और अब चलते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो शुक्रवार को यानी आज पाकिस्तानी जेल में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस दे सकता है। पाकिस्तान ने यह कदम नीदरलैंड्स की हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय अदालत के उस फैसले के बाद उठाया है जिसमें उससे कहा गया था कि वो मौत की सजा पाए जाधव को तुरंत राजनयिक मदद मुहैया कराए। इस मामले पर बीबीसी संवाददाता गुरप्रीत सैनी ने पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हारून रशीद से बात की।
देखें, अगर आपको याद हो, द हेग में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उन्होंने पिछले माह ये फैसला दिया था और पाकिस्तान को कहा था, पाकिस्तान से कहा था कि वो कुलभूषण यादव को कौंसुलर एक्सेस देनी चाहिए उसको। तो उसी सिलसिले की ये एक कड़ी नजर आ रही है कि जो पाकिस्तान का विदेश का मंत्रालय है, उन्होंने आज ऐलान किया है कि उन्होंने भारत को ये ऑफर की है कि वो फ्राइडे के दिन कौंसुलर एक्सेस अवेल कर सकते हैं और आकर देख सकते हैं। यहाँ हमारी जो भारत का हाई कमीशन है, वहाँ भी बात हुई, तो वो भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि उन्हें ये मिला है पैगाम और वो उस पर सोच विचार कर रहे हैं। तो पाकिस्तान भी इंतजार कर रहा है कि क्या इंडिया ये ऑफर एक्सेप्ट करता है और कल ये मुलाकात हो पाती है, या ये जो नोटिस है काफी शॉर्ट है, कुछ लोग कहते हैं कि काफी शॉर्ट नोटिस पे दिया है पाकिस्तान ने, तो क्या भारत इतना जल्द तैयार हो जाएगा काउंसलर एक्सेस के लिए।
जी, काउंसलर एक्सेस मिलने से कुलभूषण जाधव के जो हालात है, उनकी जो स्थिति है, उसमें क्या बदलाव आ सकता है?
देखिए, काफी बदलाव आ सकता है, ये पहली मर्तबा होगा। पहले उनकी जो बेगम है और वालदा है वो आकर मिल चुकी हैं, लेकिन जिस तरह का वो था मिलाप, उसमें कोई ज्यादा बात तो नहीं हुई। लेकिन काउंसलर एक्सेस जरा ज्यादा होता है, उसमें जो दूसरे देश का डिप्लोमेट होता है वो जाके मिलता है, की सूरत हाल पूछता है, हालात पूछता है, और अगर उसको किसी चीज की जरूरत है तो वो जरूरतें उससे पता करता है। तो मेरा ख्याल है कुलभूषण यादव के लिए तो काफी अच्छा होगा कि एक तरह से उनको अपने देश तक एक्सेस मिल सकेगा और वो कोई अगर कोई चीज चाहिए या कोई बात है तो वो उन तक पहुंचा सकेंगे। लेकिन ज्यादा तवज्जो मीडिया की अटेंशन इसी पर रहेगी कि क्या जो ये काउंसलर एक्सेस मिलता है तो उसमें वो कोई पॉलिटिकल बात करते हैं, अपने पर लगे आरोपों के बारे में कोई बात करते हैं और कहते हैं कि उनसे जो बयानात हैं वो दबाव में लिए गए या क्या है। तो अगर इस तरह की कोई चीज सामने आती है तो फिर एक काफी टर्निंग पॉइंट होगा और एक अहम माइलस्टोन होगा इस केस में। तो वो देखना है कि भारत फिर वापस आकर जो डिप्लोमेट्स मिलते हैं वो कोई बात मीडिया से करते हैं नहीं करते, उस पर ये बड़ा इशार होगा। लेकिन उनकी अपनी वेलबींग के लिए एक अच्छी पेशकश है कि कम अज कम अपने देश का डिप्लोमेट आकर उनसे मिलेगा।
जी बिल्कुल, उनको कुछ राहत तो मिलेगी। लेकिन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसने काउंसलर एक्सेस देने की बात की थी, जो पाकिस्तान अब दे रहा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि फिर से ट्रायल भी कराया जाना चाहिए। तो आपको लगता है कि ट्रायल की जो संभावनाएं हैं वो भी बन रही है रीट्रायल की?
देखें, ट्रायल की तो अभी तक कोई ऐसी डेवलपमेंट देखी नहीं गई कि कोई नई कोर्ट में या किसी तीसरे जज के पास ये केस सरकार लेके जा रही है, उस पर कोई डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन खुद पाकिस्तानी सरकार ये भी कहती रही है कि कुलभूषण के पास भी ये हक है कि वो हायर कोर्ट में या किसी सिविलियन कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना अपील कर सकते हैं केस के खिलाफ। तो अभी तक उस तरफ से भी कोई इस पर डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो हो सकता है ये जब डिप्लोमेटिक एक्सेस मिलेगा तो उसमें इस मुद्दे पे भी बात हो कि क्या कुलभूषण अपील करना चाहते हैं और उसमें उनका अपना देश उनकी कितनी मदद कर सकता है और क्या उनके बिहाफ पे ये केस यहाँ की अदालत में किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान सरकार की बात है, उस तरफ कोई पेशकश नहीं है कि उन्होंने इस केस को किसी दूसरी अदालत में चलाना है। वो मेरा ख्याल में स्टिक करेंगे कि जो भी मिलिट्री कोर्ट ने फैसला किया है, शायद वो उसको दुरुस्त मानते हैं और उसी पर कायम रहने की कोशिश करेंगे।
तो भारतीय कुलभूषण जाधव जो इस वक्त पाकिस्तान की एक जेल में बंद हैं, उनको मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी है जासूसी के आरोप में, उनको आज काउंसलर एक्सेस मिल सकता है, बता रहे थे पाकिस्तान स्थित वरिष्ठ पत्रकार हारून रशीद। और अब अखबारों की समीक्षा का वक्त हो चुका है। सिंधु तमाम अखबारों के साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। सिंधु, बताएं अखबारों की सुर्खियाँ क्या कहती हैं?
जी इकबाल, उन्नाव, अयोध्या और दिल्ली, ये तीनों जगहें आज के अखबारों की खबरों का केंद्र हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव बलात्कार मामले की सुनवाई 45 दिन में पूरी करने का आदेश दिया है। इसके अलावा इससे जुड़े सभी 5 मामले दिल्ली ट्रांसफ़र किए जाने का भी आदेश दिया है अदालत ने। साथ ही पीड़िता को अंतरिम मुआवजे के तौर पर 25 लाख रुपए देने का भी आदेश है। और इतना ही नहीं, मामले की रोज सुनवाई और सीबीआई को ट्रक हादसे की जांच 7 दिनों के भीतर पूरी करने को कहा गया है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। और दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों के लिए बिजली मुफ्त और 400 यूनिट तक खर्च करने वालों को बिल में 50% छूट की जो खबर है वो भी सभी अखबारों के पहले पन्ने पर नजर आ रही है। एक खबर अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद मामले में मध्यस्थता समिति ने अपनी रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। ये सभी अखबारों में है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट है कि समिति ने विवाद को सुलझाने में अपनी असमर्थता जताई है। और समिति ने रिपोर्ट में कहा है सुप्रीम कोर्ट से कि इतने दिनों में जो पैनल के सारे सदस्य थे वो किसी भी सोल्यूशन पर उनकी सर्वसहमति नहीं बन पाई। तो अखबार लिखता है कि इस तरह मध्यस्थता के लिए दिए गए 155 दिन बेकार हो गए।
जाहिर है चूंकि उसमें लेकर शुरू से ही जो एक पक्ष था वो, बल्कि दोनों ही पक्ष जो थे वो इसके लिए तैयार नहीं थे, तो उसके नतीजे तो हमें शुरू से ही मालूम था कि क्या
और
होना है।
इस पैनल में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस खलीफुल्ला थे, वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू जिन्हें मीडिएशन का एक्सपर्ट भी कहा जाता है, और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर थे। अब अखबार लिखता है कि अब हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट मामले की रोज सुनवाई पर विचार करे। और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए असम सरकार ने एनआरसी की लिस्ट जारी कर दी है, और इस लिस्ट में डिस्ट्रिक्ट वाइज बताया गया है कि किस जिले में कितने लोग एनआरसी से बाहर हैं। और राज्य सरकार का कहना है कि बांग्लादेश से सटे जो ज़िले हैं उनमें एनआरसी लिस्ट से बाहर होने वाले लोगों की संख्या बाकी ज़िलों के मुकाबले कम है। और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल कहा था 16 अगस्त को कि सीलबंद लिफाफे में उसे ये रिपोर्ट दी जाए, लेकिन ये अभी बाहर आ गई है बात। और टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट का जिक्र करें तो रिपोर्ट कहती है कि वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के मुताबिक भारत की रैंकिंग नीचे हो गई है और अब ये दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया है। ये आंकड़े ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग के आधार पर तय किए गए हैं। 2017 में यानी 2 साल पहले कहें तो भारत 6ठे नंबर पर है, अभी 7वें पे आ गया है, और अभी पहले नंबर पर है अमेरिका, चीन दूसरे नंबर पे और जापान तीसरे नंबर पे है।
बहुत शुक्रिया सिंधु आपका अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब बात चीन और अमरीका की। अमेरिका ने चीन पर नए टैरिफ लगाने की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि 1 सितंबर से 300 अरब डॉलर कीमत के चीनी सामानों पर 10% टैरिफ लगाई जाएगी। अमेरिका और चीन के बीच चल रहे ट्रेड युद्ध में ये सबसे ताज़ा कदम है। अमेरिका के इस घोषणा के साथ ही बाजार में भारी गिरावट देखी गई। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट का साथ सुनिए सिंधु वासिनी से।
प्रेसिडेंट शी, हु इज समबडी आई लाइक अ लॉट, आई थिंक ही वांट्स टू मेक अ डील।
राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। मुझे लगता है कि वो एक सौदा करना चाहते हैं, लेकिन साफ कहूँ तो वो ये काम इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि वो हमारे किसानों की उपजाई चीजें खरीदेंगे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो फेंटनल ड्रग हमारे यहाँ आने से रोकेंगे, उन्होंने ये भी नहीं किया। हमारे यहाँ हजारों लोगों की फेंटनल की वजह से मौत हो रही है। और सबसे अहम बात, चीन अमेरिका से सैकड़ों बिलियन डॉलर ले जाकर खुद को फिर से स्थापित कर रहा है। अब वक्त है कि हम अपने देश का पुनर्निर्माण करें, अमेरिका का पुनर्निर्माण करें। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो चीन के बारे में एक साथ कई बातें कह रहे थे। ट्रंप ने अपने ताज़ा ऐलान में कहा है कि वो चीनी उत्पादों पर 300 बिलियन डॉलर का अतिरिक्त कर लगाएंगे। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि ये टैक्स सितंबर से लागू होगा और ये शुल्क उन चीनी सामानों पर लागू नहीं होगा जिन पर पहले से ही आयात शुल्क लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि चीन पर दबाव बनाने के लिए वो टैक्स लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और बताया कि शंघाई में दोनों देशों के बीच यानी अमेरिका और चीन के बीच हो रही व्यापारिक बातचीत अच्छी चल रही है, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि शायद ट्रंप चीन की अमेरिकी कृषि उत्पादों को खरीदने में विफलता की वजह से उकता गए हैं। अमेरिका ने चीनी उत्पादों पर पहले ही 250 बिलियन डॉलर की कीमत का आयात शुल्क लगा रखा है। ऐसे में ताज़ा टैक्स से दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच चल रहा ट्रेड वॉर खत्म होता नजर नहीं आ रहा है।
ये थी सिंधु वासनी अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेड वॉर है उसके बारे में जानकारी दे रही थी। अब एक और दूसरी खबर, वो भी अमेरिका से ही लेकिन जिसका ताल्लुक کچھ حد تک بھارت سے ہے۔ امریکہ کے ٹیکساس میں غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہوئے بھارتی مول کے کچھ لوگ وہاں شرن نہیں دیے جانے کے بعد ویرودھ جتاتے ہوئے جیل میں بھوک ہڑتال کر رہے ہیں، اور اب ان کی جان بچانے کے لیے وہاں کے ادھیکاری ان لوگوں کو زبردستی آئی وی ڈرپس لگا رہے ہیں۔ سنیے نیو یارک سے سلیم رضوی کی یہ رپورٹ۔
امریکہ کے ٹیکساس پرانت کے الپاسو شہر میں چار بھارتیہ ناگرکوں نے امریکہ میں شرن لینے کی عرضی ناکام ہو جانے کے بعد پرواسن وبھاگ کی جیل میں 9 جولائی سے بھوک ہڑتال کر رکھی ہے۔ یہ لوگ کئی مہینوں سے جیلوں میں بند ہیں، اور ان میں سے کئی لوگوں کی عرضی پر عدالتی کارروائی بھی ختم ہو گئی ہے، لیکن پرواسن وبھاگ انہیں واپس بھارت نہیں بھیج پا رہا ہے۔ اس طرح قید میں مہینوں گزارنے کے بعد ان لوگوں کی بھوک ہڑتال کا آج 25واں دن ہے۔ ان میں سے 3 بھارتی ناگرکوں کی وکیل لنڈا کورچادو کہتی ہیں کہ اب یہ لوگ پرواسن کی حراست میں انشچت کال کے لیے بھوک ہڑتال پر ہیں، اور ان لوگوں کو زبردستی IV ڈرپس لگائی گئی ہیں، اور جلد ہی آئس ایجنٹوں دوارا زبردستی کھانا بھی کھلانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔
They want to continue their hunger strike. I wouldn't call it a suicide mission. It just seems that
وکیل لنڈا کورچادو کہہ رہی تھیں، میں سمجھتی ہوں میرے موکل ابھی بھوک ہڑتال انشچت کال تک جاری رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں اسے سوسائڈ مشن تو نہیں کہوں گی، مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنی بات کہنا چاہتے ہیں اور یہ ان کے ورودھ کا طریقہ ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ آئس ادھیکاری ان لوگوں کو زبردستی کھانا کھلانا چاہتے ہیں، جو کہ ایک طرح کی پرتاڑنا ہے اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وکیل نے بتایا کہ اس طرح کوئی 10 لوگ وبھن جیلوں میں اب بھوک ہڑتال پر ہیں، اور ان کو زبردستی IV ڈرپس لگائی جا رہی ہیں۔ ان لوگوں کی مانگ ہے کہ عدالتوں میں ان کے اسائلم کے کیس پھر سے سنے جائیں۔ ان میں سے ایک کا معاملہ لمبت ہے، جبکہ باقی لوگوں کی عدالتی جج نے اسائلم کی عرضی خارج کر دی ہے اور انہیں دیش سے نکالنے کا حکم دیا جا چکا ہے۔ وکیل کے مطابق ابھی آئس ان لوگوں کو واپس بھارت بھیجنے کی کوشش میں ہے، لیکن کاغذات تیار ہونے میں سمے لگ رہا ہے۔ ادھر ٹیکساس کے ہیوسٹن شہر میں استھت بھارتی کونسولیٹ بھی ان قیدیوں سے ملنے کی کوشش کی ہے۔ بھارتی کونسل جنرل انوپم رے نے بی بی سی ہندی کو بتایا،
If the person who's been arrested does not want to meet a representative of his embassy or consulate, then there's nothing we can do about it. ہم جبردستی تھوڑا جا سکتے کہ بھئی آپ کو ملنا ہی ہے، we are in another country.
ان قیدیوں کے وکیل لنڈا کورچادو کا کہنا ہے کہ ان کے کلائنٹ بھارتی ناگرک یہ نہیں بتانا چاہتے کہ وہ بھارت میں کہاں کے رہنے والے ہیں، اور یہ بھی کہ انہیں ڈر ہے کہ ان کے پریوار والوں کو بھارت میں پریشانی ہو سکتی ہے۔ ہیوسٹن استھت بھارتی کونسولیٹ کے سوتروں کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کا سمبندھ پنجاب پرانت سے ہے۔ راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ کے ستا میں آنے کے بعد سے امریکی پرشاسن نے میکسیکو سے سٹی امریکی سیما میں غیر قانونی طور پر پرویش کرنے والے لوگوں کے خلاف سخت رویہ اپنایا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر کے امیگریشن وبھاگ نے جیلوں میں بند کر رکھا ہے۔ ادھر الپاسو کی جیل میں اب بھوک ہڑتال کرنے والے بھارتی ناگرک اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اب انہیں ویل چیئر پر ہی وکیل سے ملنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ وکیل لنڈا کورچادو کا کہنا ہے کہ وہ آئس دوارا ان قیدیوں کو زبردستی IV ڈرپس لگائے جانے اور ان کو زبردستی کھانا کھلائے جانے کے خلاف مانوادھیکار سنستھانوں کی مدد سے کیندریہ عدالتوں میں مانوادھیکار کے ہنن کا مقدمہ بھی دائر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
اور ایک دفعہ پھر لوٹتے ہیں بھارت اور چلتے ہیں بینگلورو۔ کیفے کافی ڈے کے مالک ویجی سدھارتھ کی موت کے بعد کمپنی کے بھوش کو لے کر کئی سوال کھڑے ہو گئے ہیں۔ کمپنی نے ایک ایگزیکٹو کمیٹی کا گٹھن کیا ہے اور ایک انتریم چیئرمین بھی نیوکت کر دیا ہے، لیکن پچھلے 3 دنوں میں کمپنی کے شیئر کی قیمت لگ بھگ 50% سے بھی زیادہ گر گئی ہے۔ سنیے بینگلورو سے عمران قریشی کی یہ رپورٹ۔
کیفے کافی ڈے کے سنستھاپک ویجی سدھارتھا کی موت کے بعد اسٹاک مارکیٹ پر کمپنی کے شیئر میں کوئی سدھار نہیں دکھ رہا ہے۔ پچھلے 3 دنوں میں کمپنی کے قریب 50% شیئروں کے دام گر گئے ہیں۔ سدھارتھا کے علاوہ سی سی ڈی کوئی اور نہیں چلا رہا تھا، اور شاید اسی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ میں دام اس طرح گرنے لگے۔ لیکن کافی ادیوگ پر نظر رکھنے والوں کا ماننا ہے کہ سی سی ڈی کے بارے میں اتنی آشنکاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ ان میں سے ہیں نریش ملہوترا، جو سی سی ڈی کے پورو سی ای او رہ چکے ہیں۔ دیکھیے، سی سی ڈی گھاٹے والی نہیں بلکہ منافع کمانے والی کمپنی ہے۔ قرض چکانے میں تھوڑا سمے لگے گا ہی، اور قرض ایسا بھی نہیں ہے جسے نجات نہ پایا جا سکے۔ قرض ہر اس کمپنی پر ہوتا ہے جو تیزی سے ترقی کرنا چاہتی ہے۔ یہ تھے نریش ملہوترا کے شبد۔ उद्योग पर नजर रखने वालों का कहना है कि सिद्धार्था के परिवार को थोड़ा समय देने की जरूरत है ताकि वो इतने बड़े हादसे के बाद अपनी भावनाओं और दुख से उबर सकें। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके बाद परिवार को बहुत से अहम निर्णय लेने होंगे। सिद्धार्था की पत्नी और उनके दो बेटे सीसीडी में 54% शेयरों के मालिक हैं। अभी सिर्फ एक अंतरिम अध्यक्ष और एक कार्यकारी समिति बनाई गई है जो अगले 10-12 दिनों में कोई पहला कदम उठाएंगे। कार्यकारी समिति को पहले एक अध्यक्ष और सीईओ को ढूंढना होगा जिन्हें कॉफी उद्योग का अनुभव हो। फिर खर्च कैसे चुकाया जाए कार्यकारी समिति को इस बारे में भी कुछ सोचना होगा। इसका असर कंपनी के ब्रांड पर भी पड़ेगा। ब्रांड एक्सपर्ट हरीश बिजूर कहते हैं, ये ब्रांड बहुत ही मजबूत ब्रांड है और साथ ही इसे बहुत से लोग भी जानते हैं। जो भी हुआ हो अभी तक उसका कोई असर ब्रांड पर नहीं दिख रहा है। ये थे हरीश बिजूर के शब्द। जानकारों का कहना है कि अगर सिद्धार्था का परिवार कंपनी को बेचना भी चाहे तो इससे पहले उन्हें कंपनी को संभालना चाहिए ताकि उसके शेयरों के दाम बढ़े और कंपनी को वैल्यू भी बढ़े। लेकिन बाजार के विश्लेषकों का मानना है कि अगर जरूरत पड़ी तो सीसीडी को बेचने के बजाय सहायक कंपनियों को बेचना चाहिए। बहरहाल सीसीडी ऐसा ब्रांड है कि आने वाले दिनों में हर किसी की निगाह उस पर टिकी रहेगी। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
जाहिर है हर किसी की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि कैफे कॉफी डे के मालिक विजय सिद्धार्थ की मौत हो जाने के बाद अब उनकी इस कंपनी का क्या होगा। और अब सुनते हैं खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ इंदु पांडे। विश्व कप में जीत के बाद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की एशेज सीरीज कल शुरू हो गई। विश्व कप अगर 50 ओवर के प्रारूप की शीर्ष प्रतियोगिता है तो टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के लिए एशेज से बढ़ के कुछ भी नहीं। विश्व कप जीत से इंग्लैंड में क्रिकेट के समर्थकों की संख्या में इजाफा भी हुआ है और एशेज में जीत इन नए समर्थकों को जोड़े रखने में काफी महत्वपूर्ण होगी। और इस तरह से इस श्रृंखला के साथ दोनों टीमों के लिए आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत भी होगी। और अब बात करते हैं हॉकी की। FIH रैंकिंग में 10वें स्थान बेकाबिज भारतीय महिला हॉकी टीम को टोक्यो में 17 अगस्त से शुरू हो रहे ओलंपिक टेस्ट टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया, चीन और मेजबान जापान की चुनौती का सामना करना होगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की बात करें तो नियमित कप्तान मनप्रीत सिंह की अनुपस्थिति में हरमनप्रीत 17 अगस्त से शुरू होने वाली इस टेस्ट प्रतियोगिता में टीम की कमान संभालेंगे। हरमनप्रीत को लेकर के हॉकी एक्सपर्ट हरमिंदर सिंह का कहना है,
हॉकी इंडिया ने एक अच्छा कदम उठाया है, इनको कप्तानी दी गई है, एक को ड्रैगलिक का और दूसरा कप्तानी का, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हरमनप्रीत को आगे भी निभानी पड़ेगी। ये इनको ये सोच के चलना पड़ेगा कि ये कप्तानी आज नहीं तो कल आएगी हरमनप्रीत सिंह को, और हरमनप्रीत सिंह को इसकी एक आदर्श भी डालनी देनी पड़ेगी कि फ्यूचर का वो कप्तान है, बहुत अच्छे खिलाड़ी है और ड्रैग फ्लिकर में एक माहिर है, तो मेरे ख्याल से लगता है कि हरमनप्रीत के लिए एक अच्छा कदम है।
तो इस तरह से कप्तान मनप्रीत सिंह की अनुपस्थिति में हरमनप्रीत 17 अगस्त से शुरू होने वाली इस टेस्ट प्रतियोगिता में भारतीय हॉकी टीम की कमान संभालेंगे। और इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा जल्दी ही जनवरी 2020 तक टेनिस की दुनिया में वापसी कर सकती हैं। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
खेल समाचारों के बाद अब वक्त हो गया है प्रमुख समाचार का।
बीबीसी समाचार। केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानूनों में संशोधन को लेकर आज पूरे भारत में ट्रेड यूनियंस की हड़ताल है। ट्रेड यूनियंस का कहना है कि ये बदलाव मजदूर विरोधी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी उत्पादों पर $300 बिलियन का अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने का ऐलान किया है। ये शुल्क सितंबर से लागू होगा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इबोला पर काबू पाने की कोशिश कर रही राहत एजेंसियों ने अपील की है कि कॉन्गो और रवांडा की सीमा को खुला रखा जाए। अमरीकी सेना का कहना है कि उसने उत्तर कोरिया के एक नए मिसाइल लॉन्च के बारे में पता लगाया है। सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी का कहना है कि सीरियाई सरकार विद्रोहियों के कब्जे वाले उत्तर पश्चिमी इलाके में युद्ध विराम के लिए तैयार हो गई है। सऊदी अरब ने एक नए कानून का ऐलान किया है जो महिलाओं को बिना किसी पुरुष अभिभावक की इजाजत के देश के बाहर यात्रा करने का अधिकार देता है। अब इस कानून के बाद 20 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिलाएं पासपोर्ट के लिए अर्जी दे सकेंगी। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली दीपक जसरोटिया ने। आपसे अगली मुलाकात होगी शाम 7:30 बजे और कार्यक्रम होगा दिन भर। लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 24 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।